राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे जय। जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय। नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा। हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा भजुर मन गोविंदा। हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा भजुर मन गोविंदा। हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा। हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। हे कर सर पर अधर अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे। अर हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भेर बने। हर मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर्ण में घन रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदिर। श्याम र मेरे जीजी रंग भर सुंदिर, श्याम र मेरे जीजी। हे तब दमक दमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कौन गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ नब होत कड़ाकन गणरण गिरिवर शिखर बजे। गणरण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदिर। श्याम र मेरे जीजी रंग भर सुंदिर, श्याम र मेरे जीजी रंग भर। हे ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला। लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे जी गए विसारी गिरधारी रे जी गए विसारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री राधा गिरधारी भगवान की ऐसे भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 32 33 और 34
कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम् यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधस ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दैत इप्सितं मन्यदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णे सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने किरात हूणा घ्रपुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाखसादय यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मे प्रभवीष्णवे नमः प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज ससतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदता भूरतेर महतबी यईमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूश पूरुष भुंतेर गुणाशो रशोडशात्मक सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि में आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे प्रियो जगत करो करुणायवतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वरम श्रीचैतन्य महाप्रभु नीचोऽपि यत् प्रसादा भक्ति शास्त्र प्रवर्तक।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर हम प्रति शुक्रवार को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर उत्सव गौड़ीय भक्तों के लिए आ रहा है, गौर पूर्णिमा। करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन अगली पूर्णिमा के दिन आ रहा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना अति आवश्यक है। और यहाँ शुक्रवार के आने वाले भक्तों के लिए ये गौर पूर्णिमा तक अंतिम प्रोग्राम है। इसके बाद यहाँ पर हम गौर पूर्णिमा के बाद मिलेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिन के पहले यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ श्रवण करने की कराने की इच्छा हुई है। थोड़ा बढ़ाइए बोले तो श्रीमद् भागवतम में साधारणतया संसार के लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह चैतन्य महाप्रभु एक साधारण सन्यासी थे या साधारण भक्त थे या साधु थे, इस प्रकार से कहते हैं। भक्तों में भी देखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण मानने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। इसके प्रमाण कई वेद शास्त्र और उपनिषदों में दिए गए हैं। करीबन हमारे पास 100 से अधिक प्रमाण उपलब्ध है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण है। तो और सब वेद और पुराणों की छोड़िए, सभी पुराणों का सार है निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखादये अमृत द्रव संयुतम। सभी वेद शास्त्र और उपनिषदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और श्रीमद् भागवतम से और कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये एक महान प्रमाण के रूप में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। और इस भागवत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी दी गई है। यद्यपि यह भागवत ग्रंथ आज से 5000 वर्ष पहले लिखा गया था और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आज से 523 साल पहले हुआ, परंतु फिर भी भगवान के अवतार जो होते हैं उनकी चर्चा वेद और पुराणों में पहले से की गई होती है। तो इस भागवतम में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है, हम जो कथा सुन रहे हैं, नारद मुनि वसुदेव के घर पर गए हैं, तो नारद मुनि वसुदेव के घर पे जाएंगे, वसुदेव जी बहुत ही सुंदर नारद मुनि का स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद वसुदेव जी नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि हे नारद मुनि, मुझे भागवत धर्म के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देते हुए नारद मुनि वसुदेव को, भगवान श्री कृष्ण के पिता को, उस स्थल पर लेकर जाते हैं, उस जगह पर लेकर जाते हैं, चलकर नहीं मन से, कथा के द्वारा, जहां पर जनक निमि के रूप में है और राजा निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र, जिसे 9 योगेंद्र कहा जाता है, वे 9 योगेंद्र महाराज निमि के यज्ञ में आकर बैठे हैं। और निमि महाराज ने 9 योगेंद्र 9 ऋषियों को 9 प्रश्न पूछे हैं और वह 9 प्रश्न के उत्तर ही भागवत धर्म है। तो निमि महाराज ने क्रमशः अलग अलग प्रश्न अलग अलग योगेंद्रों को पूछा, उस क्रम अनुसार निमि महाराज ने उस 9 योगेंद्रों में एक ऋषि थे जिसका नाम था करभाजन ऋषि। करभाजन ऋषि को प्रश्न पूछा कि कस्मिन काले से भगवान किम वर्ण की दिशो नृभि नामना वा केन विधिना पूज्यते तादि हेम्यताम। हे करभाजन ऋषि, कृपया करके आप हमें यह बताइए कि भगवान किस किस युग में कौन से भगवान प्रकट होते हैं और उन भगवान की को कैसे हम पहचान सकते हैं, वो भगवान का रंग क्या होता है, भगवान का नाम क्या होता है और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया करके आप हमें बताइए। यह प्रश्न पूछने पर करभाजन ऋषि ने उत्तर दिया कि हे निमि महाराज, हे राजन, अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान अवतरित होते हैं, संभवामि युगे युगे। सतयुग में भगवान प्रकट होते हैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए, तो सतयुग में भगवान जब प्रकट होते हैं तो सतयुग में भगवान का रंग श्वेत होता है, सफेद रंग के होते हैं और उसका नाम है हंस। हंस के रूप में आकर युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं और यदि सतयुग में भगवान की प्राप्ति करनी हो तो कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा उस भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हे राजन, यदि त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करनी हो तो यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और त्रेता युग के जो भगवान है ये रक्त वर्ण के हैं। रक्त अर्थात ब्लड, खून। जैसे ब्लड का रंग लाल होता है ऐसे रक्त संस्कृत शब्द है, रक्त का अर्थ लाल। त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण के हैं। पूछा, रक्त वर्ण के कौन है? तो करभाजन ऋषि कहते हैं यज्ञ। यज्ञ ही भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और युग धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग में भगवान नीले रंग में अवतरित होते हैं और उनका नाम है कृष्ण। और द्वापर युग में यदि कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो द्वापरे परिचर्यायाम, अर्चना के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। निमी महाराज बहुत उत्सुक हुए कि कलयुग के कौन भगवान है और कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, आप हमें यह बताइए। ये सब सतयुग द्वापर त्रेता की बात हुई, कलयुग में कौन से भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, कृपया करके बताइए। तब गर्भाजन ऋषि कहते हैं, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कहते हैं कलयुग में जो भगवान है तो वो भगवान कृष्ण वर्ण, वर्ण का अर्थ रंग मत समझिए, वर्ण का अर्थ होता है शब्द। यदि आपको बाराखड़ी याद हो तो उसमें वर्ण आता है, स्वर आता है, व्यंजन आते हैं, वर्ण भी आते हैं, लेकिन हम तो सब भूल गए। वर्ण का अर्थ होता है शब्द और वर्ण का एक अर्थ भी होता है बोलना। तो कलयुग में जो भगवान आएंगे, भगवान वे भगवान क्या करेंगे, कृष्ण वर्ण, वे भगवान अपना ही कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे। कलयुग के जो भगवान है कृष्ण वर्णम, वे अपना ही वर्णन करेंगे, ये पहली हिंट दे रहे हैं कृष्ण वर्णन। नहीं महाराज ने पूछा, ठीक है वे कृष्ण का ही वर्णन करते रहेंगे, अपना ही नाम लेते रहेंगे, परंतु उसका रंग कौन सा है, सबका रंग बताया तो इसका भी बता दीजिए। तो कहते हैं त्विषा अकृष्णम, उनकी जो त्विषा है, उनकी जो आभा है, उनका जो रंग है, वे कलयुग में कृष्ण काला नहीं होगा, अकृष्णम त्विषा अकृष्णम अर्थात काला नहीं गोरा होगा। कलयुग में जो भगवान आएंगे उनका रंग कैसा होगा, अकृष्ण, अकृष्ण का अर्थ होता है गोरा। अच्छा, और भी इसकी कोई योग्यता होगी? हाँ, और सब युगों में भगवान अस्त्र लेकर आते हैं, धनुष लेकर आते हैं, बाण लेकर आते हैं, गदा लेकर आते हैं, चक्र लेकर आते हैं, परंतु इस युग में भगवान अपने पार्षदों को ही अस्त्र बनाकर आएंगे, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षद रूपी अस्त्र को लेकर इस युग में आएंगे। इस युग में धनुष बाण और चक्र लेकर भगवान नहीं आएंगे। तो ऐसे भगवान कौन है आप पता लगा लीजिए और उसका भजन करने लगिए। कलयुग के जीव इतने पर भी नहीं पता लगा पाएगा। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण वर्णम। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखा गया है कि हा कृष्ण कृष्ण का नाम ही जपते रहते थे, कृष्ण 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 है रक्षा माम पाही माम। और केवल रटते नहीं थे, सब लोगों को इसका उपदेश भी देते थे, कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णन करते थे और लोगों को कृष्ण के नाम का प्रचार करते थे। और त्विषा अकृष्णम ये कह रहे हैं कलयुग में भगवान का रंग गोरा होगा, चैतन्य महाप्रभु का रंग बिल्कुल गोरा था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मंत्र में कहा जाता है गौरांग, महाप्रभु का एक नाम ही है गौरांग, जिसका अंग गौर है उसे गौरांग कहते हैं। और सांगो पांगास्त पार्षदम, चैतन्य महाप्रभु कभी अस्त्र धारण नहीं किए, एक बार किए थे जगाई मदाई के समय, परंतु वो भी वापस कर लिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता ही उनका अस्त्र था और उनके साथ जो पार्षद थे वही उनके अस्त्र और शस्त्र थे। तो इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु ही इस कलयुग के भगवान है और इस भगवान को यदि प्राप्त करना है तो यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राये, संकीर्तन के द्वारा उस भगवान का नाम लेने के द्वारा उस भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा 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 और कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे वही इस प्रकार से करेंगे। यजन्ति ही सुमेधस, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि और सुमेध का अर्थ होता है सुष्टु बुद्धि, अच्छी बुद्धि। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे और बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त करने का यदि कोई प्रयास नहीं करता है और जितने भी व्यक्ति हैं सब मूर्ख हैं, इसका भाव यही है। सुमेध से बुद्धिमान व्यक्ति ही यह महामंत्र जप के भगवान को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से निमि महाराज करभाजन ऋषि निमि महाराज को कह रहे हैं और उस चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं ध्येयम सदा, उस महाप्रभु का उस कृष्ण का नाम सदा जपते रहना चाहिए, सदा सदा सर्वदा। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक समय में ही लिया जा सकता है, एक आसन पर ही लिया जा सकता है, किसी भी अवस्था में पवित्रता अपवित्रता किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं सदा के लिए। परिभव नम अभिष्ट दोहम, और यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उनकी सभी वांछा पूर्ण होती है। तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम, और ये जो चैतन्य महाप्रभु है भगवान है उनकी शरण बड़े बड़े देवता लोग लेते हैं। कौन बड़े देवता कौन है? शिव जी और ब्रह्मा जी। शिव विरिंची, विरिंची का होता है ब्रह्मा, शिव और ब्रह्मा भी उस भगवान का चरण पकड़ते रहते हैं। शिव और ब्रह्मा को जब आपत्ति आती है तब भगवान की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी तो अक्सर जब पृथ्वी भारी हो जाती है बहुत कष्ट आता है तो बार बार ब्रह्मा जी शिव जी के पास भगवान के पास जाते हैं और शिव जी भी बार बार भगवान के पास जाना होता है। एक बार एक बहुत बड़ा असुर था, क्या नाम था उसका? भौमासुर, भस्मासुर, सब लोग को याद है। अब कहने में भी दिक्कत हो रही है, यदि गलत बोल दिया तो पकड़ लेंगे आप। भस्मासुर नाम का एक असुर था, राक्षस था। उसने बहुत बड़ा तप किया और जो राक्षस होते हैं असुर होते हैं वे भी तपस्या करते हैं, परंतु असुर लोगों की तपस्या लोगों को दुखी करने के लिए होती है और भक्त भी तपस्या करते हैं परंतु भक्त की तपस्या संसार के लोगों को सुखी करने के लिए होती है। सर्व भवन्ति सुखी नाम सर्वे संतु निरामय, सब लोग सुखी हो, सबका कल्याण हो, भक्त की यह भावना होती है। और असुरों की भावना होती है थोड़ी भी शक्ति आ जाए तो दूसरों को परेशान करे। तो भस्मासुर ने बहुत ही बड़ी तपस्या की और तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। और भोले तो है ही, शिवजी बहुत भोले हैं, थोड़ी सी भी तपस्या कर लो तो प्रकट हो जाते हैं। कल ही के दिन में, कल शिवरात्रि थी, कल के दिन में एक बहुत बड़ा असुर था, असुर नहीं शिकारी था, शिकार करने के लिए वन में गया परंतु शिकार नहीं मिला। एक पेड़ के ऊपर बैठा और सोचा कि कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा, परंतु सुबह से लेकर शाम हो गई शिकार नहीं मिला। तो रात को उसी पेड़ के ऊपर बैठकर देखने लगा कोई शिकार आ जाए तो मैं उसको पकड़ूं, और शिकार को ढूंढने के लिए टाइम पास करता रहा। टाइम पास करने के लिए पेड़ से पत्ते निकाले और तोड़ कर ऐसे ऐसे करता था, पेड़ के पत्ते तोड़ रहा था। तो इस प्रकार से पेड़ के पत्ते तोड़ रहा था, सुबह उठकर देखा तो शिव जी प्रसन्न प्रकट हो गए उनके सामने। प्रकट हो गए परंतु बहुत बड़ा प्रश्न उठा, इतने बड़े शिकारी के सामने शिव जी क्यों प्रकट हुए? परंतु बाद में पता चला कि वे जिस पेड़ के ऊपर बैठा था उस पेड़ के मूल में शिवलिंग जमीन के अंदर दटी हुई थी और वो पेड़ बिली का पेड़ था, बिली पत्रों को तोड़कर उसके ऊपर डाल रहा था। शिव जी को लगा कि मुझे बिली पत्र चढ़ा रहा है, शिव जी प्रकट हो गए। बेचारे बहुत भोले हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आपको पता है शिव जी तुरंत क्यों प्रकट हो जाते हैं? ये भी जानना चाहिए। शिव जी निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा राम। तो भगवान के नाम में, भगवान के नाम के जप में बहुत बिजी रहते हैं। और यदि कोई यहां से बुलाए कुछ छोटी मोटी कामनाओं के लिए, तो शिव जी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्या आ गया। शिव जी की बात छोड़ दीजिए, शिव जी तो वैष्णव नाम यथाशंभु है। अरे हम तो भक्ति में 2-3 महीने से आने लगते हैं और कोई हमें भक्ति करते करते बुला लेता है तो हम सोचते हैं ये कौन क्यों आ गया यहाँ पर। और शिव जी तो शुद्ध भक्त है, जब उसे कोई डिस्टर्ब करता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं और जो चाहिए वो दे देते हैं। तो ये भस्मासुर बहुत बड़ी तपस्या किया, शिव जी को प्रकट किया। तो शिव जी आए तो शिव जी अपनी पत्नी को साथ में लेकर आए, क्या पता शिव जी को मूड हो गया। तो शिव जी ने कहा, भस्मासुर आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो शिव जी ने कहा, भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मेरा हाथ जिसके ऊपर रखूं ये जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब शिव जी ने सोचे बिना कह दिया तथास्तु। ये देवता भी सोचते नहीं है और बाद में पछताते हैं। ब्रह्मा जी हिरणाक्ष को, हिरणाकश्यपु को वरदान दे दिए, बाद में पछताए। तो शिव जी ने कहा तथास्तु, आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाए। भस्मासुर जब वो वरदान लिया तो भस्मासुर उसने सोचने लगा कि शिव जी की पत्नी बहुत अच्छी है और सबसे पहले यह प्रयोग शिव जी के ऊपर ही करूंगा, उसको भस्म करके उसकी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा। ये असुरों का स्वभाव। तो ये भस्मासुर ये हाथ को लेकर शिव जी के ऊपर रखने गया तो शिव जी वहां से भाग गए। अब तो शिव जी आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे। शिव जी बहुत भागे परंतु भस्मासुर उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते शिव जी अब क्या करे, बेसहारों के सहारा भगवान कृष्ण है। कृष्ण रास्ते में मिले, शिव जी ने कृष्ण ने देखा कि शिव जी क्यों भाग रहे हो। शिव जी ने कहा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, भस्मासुर को वर दिया कि आप जिसके ऊपर अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ये मेरे ऊपर ही आ गया। भगवान बहुत बोलने में चतुर है। भगवान ने कहा आप डरो मत, आप साइड में हो जाओ, मैं संभाल लेता हूं। भगवान एक ब्राह्मण का रूप ले लिए और भस्मासुर दौड़ते हुए जा रहा था शिवजी के पीछे, भस्मासुर को रुकाया। कहां जा रहे हो? भस्मासुर ने कहा कि शिवजी को भस्म करने जा रहा हूं। शिवजी को भस्म कैसे करोगे? भस्मासुर ने कहा कि शिवजी ने ही वरदान दिया है, हाथ उसके ऊपर रख दूंगा ये भस्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा तुमने शिवजी के ऊपर विश्वास कर लिया, शिवजी ने तुम्हें वरदान दे दिया और तुम्हें विश्वास हो गया। अरे जो खुद रहने के लिए घर नहीं रखता है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके पास खरीदने के लिए धन नहीं है, क्या वे आपको वरदान दे देंगे? तुम्हें पता नहीं है जब से दक्ष प्रजापति ने उसका अपमान किया है तब से उसमें सारी शक्ति समाप्त हो गई है। दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को कह दिया है कि उसे यज्ञ की हवि नहीं मिलेगी, तब से ये बिल्कुल पावर उसका कम निकल गया है, इसलिए उसका वरदान ठीक नहीं होता है। भस्मासुर ने कहा अच्छा ऐसा? हाँ, भगवान ने कहा इसका उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, और यदि आपको ऐसा ही है तो देख लो अपने सिर पर हाथ रख के। भस्मासुर ने कहा आपने बहुत अच्छी बात बताई। भस्मासुर अपने हाथ को अपने सिर पर रखे और सिर पर रखते ही भस्म हो गया। तो बड़े बड़े देवताओं को भी जब आपत्ति आती है तो भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। तात्पर्य यह है, यहाँ पर कह रहे हैं शिव विरंची नृतम शरण्यम, शिव और ब्रह्मा भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आप तो कहेंगे ये तो कृष्ण की शरण ग्रहण किए, चैतन्य महाप्रभु में ऐसा कुछ है? अरे जो शिव जी और ब्रह्मा जी थे वही शिव कलयुग में अद्वैत आचार्य बने, और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने। अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर की आज्ञा से, उनकी उत्सुकता से ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जीव गोस्वामी इसके टीका में कहते हैं वही शिव जी और वही ब्रह्मा जी अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में आए, और तुलसी दल मात्र न रोज भगवान को प्रकट करने के लिए उपाय कर रहे थे, और उनके उपाय से वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। विद्यार्थि हम प्रणत पाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। ऐसे महापुरुष, ऐसे कृष्ण, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। निमि महाराज अगले श्लोक में बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। निमि महाराज अब अगले श्लोक में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और ऐसा प्रणाम कर रहे हैं कि जितने भी युग धर्म स्थापित करने वाले युगा अवतार है, उस युगा अवतार को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ये भगवान श्री रामचंद्र को भी, क्योंकि त्रेता युग के भगवान रामचंद्र थे, द्वापर युग के कृष्ण थे, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, इसलिए एक श्लोक ये तीनों भगवानों को अंगित करता है। तब देखेंगे कि ये जो श्लोक है ये तीनों के ऊपर कैसे लागू होता है। ये कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्यागना, सुदुस्तेज जिसे त्यागना बहुत मुश्किल है ऐसे को त्यागना, और सुर इप्सित, सुर का अर्थ होता है देवता, इप्सित का अर्थ होता है इच्छा। देवता लोग जिसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ऐसी चीज को त्याग दिया। राज्य लक्ष्मी, लक्ष्मी को, राज्य लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्यों को देवता लोग भी जिसके लिए तड़पते रहते हैं ऐसी लक्ष्मी और ऐश्वर्यों को त्याग दिया, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो ऐसे भगवान कौन है? त्रेता युग में यदि हम देखते हैं तो त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। भगवान ने, लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है सीता, भगवान श्री रामचंद्र ने सीता को त्याग दिया। आप कहेंगे देवता की इच्छा थी? देवताओं की इच्छा है कि राम लक्ष्मण और जानकी और हनुमान जी को साथ में देखे, इप्सित, परंतु सभी इच्छाओं को छोड़कर साक्षात लक्ष्मी सीता को भगवान ने त्यक्त्वा। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। यही चीज कृष्ण के लिए भी है, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी का अर्थ है ऐश्वर्य, धन इत्यादि। तो मथुरा भगवान यत्र नित्यम समितो हरि, मथुरा जो है ये धन की नगरी कही जाती है। मथुरा में बहुत बड़ा ऐश्वर्य था। आपने सुना होगा जब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ तो कितना कितना दहेज में दिया, आज तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मथुरा को ऐश्वर्य का राज्य कहा जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, और जन्म लेकर सुरेप्सित त्यक्त्वा, जन्म लेकर तुरंत ही त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, बहुत बड़े ऐश्वर्य को त्याग दिया। जिस मथुरा में बड़े बड़े देवता भी रहने की इच्छा रखते हैं ऐसे ऐश्वर्य को भगवान ने त्याग दिया। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु के लिए भी आती है, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया को त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी स्वर्ग की अप्सरा से भी करोड़ों गुना सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी, परंतु उसे त्यक्त्वा। तो इस प्रकार से यह तीनों भगवान के लिए यह इंगित किया गया है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा। धर्मिष्ठ का अर्थ होता है धर्म में निष्ठा रखने वाला। तो हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र अपने धर्म में अडग थे, सभी प्रकार के धर्म का परफेक्ट पालन किए। माता ने आज्ञा दी तो उस आज्ञा का पालन किया। सीता जैसी अपनी पत्नी को एक राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए भगवान ने करके दिखाया, धर्मिष्ठ बनकर। भाई के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, यह भगवान श्री रामचंद्र ने धर्म निष्ठा के द्वारा बताया है। और यही चीज कृष्ण के लिए धर्मिष्ठ। कृष्ण ने भगवद गीता, उद्धव गीता, युधिष्ठिर गीता के द्वारा धर्म की स्थापना की। और चैतन्य महाप्रभु धर्म निष्ठ थे, अपने सन्यास धर्म में बिल्कुल निष्ठ थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर सन्यास धर्म का पालन किए थे। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए थे उस सन्यास अवस्था में कुछ लोग अपने घर पर बुलाते थे, राजा प्रताप रुद्र अपने राज्य में बुलाता था परंतु नहीं जाते थे, क्योंकि सन्यासी का एक धर्म है कि किसी भी बड़े धनी व्यक्ति से न मिले। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने धर्म में धर्मिष्ठ थे। तो यह धर्मिष्ठ शब्द भी तीनों के लिए दिया जाता है। आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम, तीसरी बात कह रहे हैं आर्य वचसा। आर्य का अर्थ होता है बड़े लोग, आर्य का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, आर्य का अर्थ माता पिता भी होता है और आर्य का अर्थ वरिष्ठ भी होता है। तो आर्य वचसा, वचसा का अर्थ होता है कहने पर, आर्यों के कहने पर। यद अगाध अरण्यम, जो वन में चले गए ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो आर्य के कहने पर वन में कौन चले गए, भगवान श्री रामचंद्र। कई कई ने अपने पति दशरथ जी से दो वर मांगे, आप कथा से परिचित होंगे। एक समय देवताओं का और असुरों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं को लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए देवताओं ने इस भूमंडल पर रहने वाले अवधपुरी के राजा दशरथ को बुलाया कि आप भी हमारे साथ चलो युद्ध करने के लिए। और उस वक्त दशरथ जी का प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा था। दशरथ जी बहुत बड़े शूरवीर थे और दशरथ जी देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए, असुरों के साथ युद्ध किए। तो यह घटना मिलती है कि उस युद्ध में दशरथ जी का पहिया निकलने जा ही रहा था, तो कैकेयी ने बचा लिया। यदि पहिया निकल गया होता तो दशरथ जी उस युद्ध में विजय नहीं हो पाते, परंतु कैकेयी ने कैसी भी करके उसे बचा लिया। जब कैकेयी ने बचा लिया तो दशरथ जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए और कैकेयी से कहे कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो कैके ने कहा कि मैं इस संसार में दो व्यक्ति से प्रेम करती हूं, एक तो आपसे और एक मेरे राम से, ये दोनों मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए वो। अब कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए जो चाहिए वो मांग लो, ये केवल भगवान कह सकते हैं। ये रामायण से यह उपदेश मिलता है कि पति को चाहिए कि पत्नी को इतनी छूट ना दे दे, जो चाहिए वो मांग लो, ये आगे चलकर क्या मांगेगी कोई भरोसा नहीं है। कुछ लिमिट, कुछ बाउंड्री होनी चाहिए। कह दिया जो चाहिए वो मांग लो। कहके ने कहा ठीक है अभी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी होगी तो मैं मांग लूंगी। दशरथ ने कहा ठीक है। जब राम का विवाह हुआ, विवाह होकर जब राम को राजा बनाना था तब मंत्रा के द्वारा कैकेयी के कान भरे गए और कैकेयी ने उस राज्याभिषेक के पहले ही दशरथ जी को अपने कोप भवन में बुलाकर कहा कि याद करो वो वरदान जो आपने दिए थे। तो हे राजन, वे दो वर आज मैं आपसे मांगना चाहती हूं। राजा ने कहा, मांगो जो चाहिए वो मांग लो। अभी भी कह रहे थे जो चाहिए मांगो। तो कैकेयी ने कहा, आप मांगो मांगो तो कहते हो, परंतु कभी दिया है आपने? राजा ने कहा, तुम्हारी कसम, मैं राम की कसम, राम की शपथ खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। कैकेयी ने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे वरदान मांगती हूं कि आप राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, राम को अवध का राजा बनाने जा रहे हैं, राम को राजा मत बनाइए, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाइए। दशरथ ने कहा, इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में बैठी हो? राम की इच्छा नहीं है कि वे राजा बने, राम को मैंने कहा है राजा बनने के लिए, और राम जब इस बात को सुनेगा तो बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि रामायण के यह जो पात्र है, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण इत्यादि, ये सभी लोगों की भावना है देना। भरत जी कह रहे थे राम आप राजा बनो, राम कह रहे थे भरत आप राजा बनो। अवधपुरी जो थी एक फुटबॉल की तरह खिलाई जा रही थी। भरत यहां से लात मार रहे थे मुझे नहीं चाहिए, और राम यहां से कर रहे थे मुझे नहीं चाहिए। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है कि जहां देने की भावना है आप रखो सोच लेना चाहिए वहां रामायण है, और जहां लेने की भावना होती है कि यह हस्तिनापुर मेरी है मेरी है, वहां पर समझ लेना चाहिए महाभारत है। देने की भावना होनी चाहिए, जहां देने की भावना है वहां सुख और शांति होती है, और लेने की भावना होती है वहां महाभारत ही होता है। तो कहा कि भरत को राजा बनाओ। दशरथ ने कहा, ठीक है। कैकेयी ने कहा, मैं दूसरा वर भी चाहती हूं। राजा दशरथ ने कहा, दूसरा वर मांगी? तब कैकेयी ने कहा, और उस कैकेयी के वचन को सुनकर राजा धड़ाम करके जमीन पर गिर गए। कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। यह 14 वर्ष राम वनवासी सुनकर दशरथ जी गिर गए। दूसरा वर मांगा कि 14 साल के लिए राम को तपस्वी के वेश में वन में भेजो। राजा दशरथ होश में आकर पांव पकड़े अपनी पत्नी के हाथ जोड़कर कहने लगे कि भरत को राजा बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु राम को वन में क्यों भेज रही हो? लेकिन कहके नहीं मानी। और यद्यपि दशरथ राजा ने राम को नहीं कहा कि आपको वन में जाना है, परंतु जैसे ही राम को पता चला कि माता ने वरदान में मुझे जंगल में जाने के लिए कहा है, यह सुनकर ही भगवान श्री रामचंद्र वन में जाने के वनवासी के वेश में आ गए। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपनी मां की इच्छा को पूर्ण करे, अपनी पिता की आज्ञा को पूर्ण करे। जब भगवान जा रहे थे तो लक्ष्मण जी आए, बहुत क्रोधित होकर आए क्योंकि अनंत शेष के अवतार है, अपने पिता को गाली देने लगे। लक्ष्मण जी का भगवान श्री रामचंद्र के साथ इतना प्रेम था, इस प्रेम के वश में इतने अंधे हो गए कि पिता को गाली देने लगे कि आज मेरे इस मानव से मैं दशरथ को मार, पिता नहीं कह रहे थे, नाम लेकर बुला रहे थे, आज दशरथ गए। इसका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया, जैसे भगवान तुल्य मेरे भाई को वन में जाने के लिए कह दिया। बहुत क्रोधित हुए, तब भगवान श्री रामचंद्र ने जो उपदेश लक्ष्मण को दिया है कि हे लखन, तुम नहीं जानते हो पिताजी को किस स्थिति में है, पिताजी कितने बड़े धर्म संकट में फंसे तुम नहीं जानते हो। एक और पिता का प्राण है, और इस रघुकुल में जितने भी राजा हो गए हैं अपना प्राण दे दिए हैं, परंतु अपने वचन से नहीं ली गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार प्राण चले जाते हैं परंतु वचन नहीं जाता है। एक और अपना प्राण है और एक और अपने पुत्र का मोह है, ये दोनों में से पिताजी कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और तुम इस प्रकार से गाली दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यदि इस प्रकार से तुमने एक शब्द भी आगे कहा तो मुझे भैया कहना छोड़ देना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। लक्ष्मण जी ये सुनकर पानी पानी हो गए। तो एक और कथा है, परंतु अपने आर्य माता के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र यद अकार अरण्यम, अरण्य का अर्थ है जंगल, वन में चले गए। ये भगवान श्री रामचंद्र की कथा। कृष्ण के लिए भी यह है, कृष्ण के लिए, कृष्ण जब मथुरा में थे और वसुदेव और देवकी ने कहा कि आपको वन में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना ही होगा, तो अपने माता पिता के कहने पर मथुरा जैसे राज रजवाड़े को छोड़कर भगवान कृष्ण और बलराम जंगल में सांदीपनि मुनि के आश्रम में चले गए। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के लिए कृष्ण अपने माता पिता आर्य का अर्थ है माता पिता के कहने पर चले गए, और चैतन्य महाप्रभु भी घर छोड़कर चले गए एक ब्राह्मण के श्राप के कारण। एक समय की बात है, श्रीवास आंगन में बहुत ही सुंदर कीर्तन होता रहता था। तो एक बार उस कीर्तन में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण आए। महाप्रभु ने कह दिया इस ब्राह्मण को इस श्रीवास आंगन में एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि रसाभास हो जाएगा। तो ब्राह्मण को एंट्री नहीं मिली, तो ब्राह्मण ने बहुत बड़ा श्राप दे दिया कि यह कल का निमाय, आज मुझे कीर्तन में शिवा सांगन में एंट्री नहीं दे रहा है, श्राप देता हूं कि ये कभी भौतिक भोग नहीं भोग पाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने उस श्राप को शिरोधार्य किया और 24 साल की आयु में अगाध अरण्यम वे अपने घर को छोड़कर वन में चले गए। यह भागवत में कहा जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं भागवत में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण राम और वही राम और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, ये तीनों का मिलान इसलिए मैं कर रहा हूं। और फिर कहते हैं माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। माया मृगम, माया रूपी मृग के पीछे धावत, धावती का अर्थ है भागना। ये तो प्रकट आप सब जानते ही हो, माया मृग बनकर मारीच आया था और दैत इप्सितम अन्वधावत, दैत का अर्थ है दया, दया करके सीता जी ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए, तो उस पर दया करके भगवान श्री रामचंद्र उस माया मृग के पीछे धावत, अन्वधावत पीछे पीछे भागने लगे। तो भगवान श्री रामचंद्र भागे मृग के पीछे, अब कृष्ण किसके पीछे भागे, माया मृगम। यहां पर दूसरा अर्थ लेना होगा, माया दो प्रकार की माया है, एक है महामाया और एक योग माया। महामाया का रूप है दुर्गा देवी और योग माया का रूप है श्रीमती राधा रानी। तो योग माया श्रीमती राधा रानी के पीछे अन्वधावत भगवान श्री कृष्ण भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीव जिस भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागते हैं, वे कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे भागते हैं। श्रीमती राधा रानी को पकड़ने के लिए, उसके साथ लीला करने के लिए उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और उसके चरणों में बैठकर मनाते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि कृष्ण को ढूंढना है तो और कहीं मत ढूंढिए, वृंदावन में यदि कृष्ण को ढूंढना है तो किसी मंदिर में मत जाइए, किसी मठ में मत जाइए, वृंदावन में यदि कृष्ण को ढूंढना है तो बैठो दुरो कुंज कुटीर में, बैठो पलोट तराधी का पाई। वृंदावन में यदि कृष्ण को ढूंढना है तो उस निकुंज में जाकर, उस निकुंज के गहरे वन में जाकर आप देखना, राधिका के चरण दबाते हुए अवश्य प्राप्त होगा। तो राधा रानी के पीछे कृष्ण भागते हैं और चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या इसका अर्थ है, माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। माया मृग का अर्थ होता है, माया का अर्थ होता है ये माया, संसार की महामाया। तो माया के पीछे, माया में जो फंसे हुए हैं उसे शास्त्र प्राणी कहता है, वो मृग को प्राणी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं કે તે પૃથ્વી લોકે ભૂવિ ભાર ભૂતા મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાર ચરંતી, મનુષ્ય કે રૂપ મે મૃગાર અર્થાત પ્રાણી હૈ, જો ભક્તિ નહીં કરતે હૈ વે મનુષ્ય કે રૂપ મે પ્રાણી હૈ પશુ હૈ, તો મૃગ કા અર્થ થા હૈ પશુ, તો માયા મે જો ફસે હુએ હૈ માયા કે પીછે જો ભાગતે હૈ ઉસે માયા મૃગ કહા જાતા હૈ। तो इस संसार में कलयुग में प्राय लोग माया में फंसे हुए हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे दौड़ने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। माया मृगम, जो माया में फंसे हुए हैं, जो लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे दैत दया करके अन्व धावत, उसके पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु धावत भागते रहते हैं। और जितने भी भगवान के अवतार हुए, साक्षात कृष्ण भी आए, जब तक सुदामा दो मुट्ठी चावल लेकर कृष्ण के पास नहीं गए तब तक कृष्ण ने उस पर कृपा नहीं की। परंतु चैतन्य महाप्रभु का ही एक ऐसा अवतार हुआ करुणा वरुणालय, जो कभी किसी की अपेक्षा नहीं रखे कि यह मेरे पास आएगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, चैतन्य महाप्रभु के लिए नहीं है। कोई कितना भी पापी तापी जड़ मूर्ख म्लेच्छ यवन भी क्यों न हो, भक्ति में आना भी क्यों न चाहता हो, ऐसे लोगों के पीछे दौड़ दौड़ कर, घर पे जाकर नहीं, कुछ लोगों के पीछे चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर भाग जाते थे। ऐसे लोगों को दौड़ दौड़ कर पकड़ कर चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम दिए, उससे आलिंगन किए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात सच्चिदानंद विग्रह जिन लोगों का आलिंगन करते थे, आलिंगन करने वाला शुद्ध भक्त बन जाता था। दक्षिण भारत की यात्रा चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध है। एक गांव में जाते थे, उस गांव में जाकर एक व्यक्ति को अपने गले लगा लेते थे, उस व्यक्ति को गले, बड़े से बड़े पापी व्यक्ति म्लेच्छ को भी गले लगाने से वह शुद्ध भक्त बन जाता, 2400 घंटा भगवान का नाम लेने लगा। जब वह व्यक्ति अपने गांव में जाता तो अपने गांव में जाकर सब लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते, ये भगवान का नाम कैसे लेने लगा। तो सब लोग उसके गले लगते तो उसको गले लगने वाले भी शुद्ध भक्त। इस प्रकार से पूरा गांव शुद्ध भक्त बन जाता। ये गांव का व्यक्ति यदि दूसरे गांव में जाता, दूसरे गांव वाले देखते कि ये तो हर बार आता है तो आज ये इस प्रकार से नाम क्यों ले रहा है, तो दूसरा गांव वाला इस एक गांव वाले व्यक्ति को स्पर्श करता तो ये भी शुद्ध भक्त, और वो फिर अपने गांव में जाकर पूरे गांव को शुद्ध भक्त, वैसे हजारों हजारों गांव को शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु ने पीछे पीछे दौड़कर बना दिया है। इसलिए कहते हैं माया मृगम दैत इप्सितम अन्व धावत वंदे महापुरुषते चरणार विंदम, ऐसे महापुरुष ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का विषय बहुत जटिल था, बहुत बुद्धि वाला था, परंतु यदि इस बात को कोई व्यक्ति समझ जाए तो वास्तव में महाप्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकता है। आप समझिए, इस कलयुग में यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हुई, बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा निश्चित रूप से चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण किस प्रकार से मिलते हैं यह भाव और यह उपदेश लेकर आए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जो उन्नत उज्जवल रस लेकर आए इस संसार के मूर्ख पापी तापी लोगों को देने के लिए, उस रस का आस्वादन कर सके व शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम पहुंच सके और आपके धाम में वापस चल सके। इस प्रार्थना के साथ यह गौर पूर्णिमा का अवसर हमें बिताना चाहिए। हरे कृष्णा तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस प्रवचन में जो कुछ समझ में न आया हो या और भी कुछ प्रश्न हो तो, बहुत सुंदर प्रश्न है। दशरथ जी जब युद्ध करने गए स्वर्ग में तो कैकेयी को साथ में क्यों लेकर गए? क्योंकि कैकेयी जो थी सबसे छोटी पत्नी थी और दशरथ जी कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी भी दशरथ से बहुत प्रेम करती थी। तो व्यक्ति जिसे प्रेम करता है उसे अक्सर साथ में ही रखता है। जिसे भगवान कृष्ण अपनी बंसरी से बहुत प्रेम करते हैं साथ में ही रखते हैं, और कभी घूम खो जाती है तो बहुत विवल हो जाते हैं। तो प्रेम बहुत करते थे इसके साथ में। त्रेता युग था भाई, रामचंद्र का राज था। रामचंद्र के राज में देविक देहिक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। किसी भी प्रकार का देविक देहिक और भौतिक किसी भी प्रकार का ताप नहीं था। जो किसान थे खेडूत थे वे चाहते थे मेरे खेत में इस समय इतने घंटे इतनी वर्षा हो तो उस खेत में उतना ही वर्षा होती थी। इतना समृद्ध राज्य था राम राज्य। और क्या बताएं आपको, समुद्र देवता जो बहुत बड़े बड़े रत्न थे कीमती रत्न वे अपने समुद्र के किनारे लाकर छोड़ देते थे, बस लेकर पहनना या बेचना है आवश्यकता था। और आज एक मोती को ढूंढने के लिए गोताखोर गोते लगाते रहते हैं, मर जाते परंतु मिलता नहीं। लेकिन वरुण देवता भगवान श्री रामचंद्र के राज्य से इतने प्रसन्न थे, किनारे पर जैसे आज बालू पड़ी है वैसे मोती और जवेरात पड़े रहते थे। कितना समृद्ध देश। आज की सरकार चाहती है राम राज्य आ जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राम राज्य आ सकता है, आज भी राम राज्य आ सकता है यदि मनमोहन सिंह अपने हाथ में माला रखकर 16 माला जप करे और कानून लगा दे कि इस संसार में रहने वाले सभी लोगों को 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, आज राम राज्य आ सकता है। लेकिन ये नहीं करते हैं, लाइसेंस देते हैं गाय को मारने के लिए कत्ल खाने में। ये राम राज्य कभी नहीं ला सकते हैं। ये लोग बहुत बड़े बड़े शांति यज्ञ करते हैं, विश्व शांति यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ करते हैं, बहुत ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं, परंतु विश्व शांति यज्ञ करने के बाद यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ही आपस में झगड़ते हैं, मेरी इतनी दक्षिणा थी, मेरी इतनी थी। अब बताइए यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को ही शांति नहीं है तो विश्व शांति कहां से कराएंगे। ये कभी शांति नहीं आ सकती। ठीक है, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। यद्यपि नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस है लेकिन कृष्ण ही राम है। यदि कोई राम की भक्ति करता है तो उसे छुड़ाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। राम के भक्त हैं, साकेत धाम प्राप्त करेंगे, उनके लिए भी धाम है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, राम और कृष्ण को अलग मानना तो बहुत बड़ा अपराध है। कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो यदि कोई राम की भक्ति करता है तो वह भी कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। राम और कृष्ण में अंतर नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों अभिषेक करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारे मंदिर में जब गौर पूर्णिमा होती है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन होता है, तो बहुत सुंदर उत्सव होता है। जैसे जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी में कृष्ण का जन्म हुआ था, वही कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म हुआ है, तो उतना ही महत्वपूर्ण उत्सव है जन्माष्टमी जितना ही। तो जन्माष्टमी में जैसे कृष्ण का अभिषेक करते हैं वैसे चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के पीछे यही भाव है, जैसे किसी का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसको नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो यही भाव है, इसलिए अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करने से पुराणों में बहुत बहुत कथन है कि अभिषेक हाथ से करने की बात दूर रही, देखने की बात दूर रही, अभिषेक चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करना है यह कोई बोल लेता है अभिषेक तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और जब वह देखे और हाथ से करे तो वो बहुत दूर की बात है, तो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है भगवान का अभिषेक करने में। तो सब लोग को मंदिर में आना चाहिए। प्रकट नहीं होता हूं, योग माया से आवृत रहता हूं। योग माया दुर्गा माता को नहीं है, दुर्गा माता को महामाया संकेत किया गया है, और योग माया का जो स्वरूप है वो है राधा रानी। ये योग माया समावृतम, भगवान योग माया से आवृत रहते हैं अपनी लीला में। ये तो योग माया तो भगवान के धाम में चलती है, यहां तो महामाया का प्रभाव है। महामाया से पहले मुक्त होना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये महामाया जो है, कभी स्वर्ग उठाए कभी नर्क डुबाए, राज दंड जैन जैन नदी तुबाए। यही महामाया कभी स्वर्ग में ले जाती है तो कभी नर्क में डुबाती है, कभी मनुष्य बनाती है तो कभी ब्रह्मा, कभी चींटी बना देती है तो कभी गधा भी बनाती है। ये माया का प्रभाव है। माया के चुंगुल में फंसकर व्यक्ति ये अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। तो इस माया से मुक्त होना है तो क्या करना है? जिसकी माया है उसके शरण में चले जाइए। माया से युद्ध मत कीजिए, नहीं जीत पाओगे। गीता में भगवान ने कहा कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, माया को पार करना दुरतय है, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो माया मेताम तरंती थे, तो वो माया को पार कर सकता है। भगवान की शरण में जाइए। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।